अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा।
कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
घन घन नीला बदन अति सुंदर।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान कृष्ण की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
घन घन नीला वदन अति सुंदर, मेघ श्यामल माधव मुरहर। घन घन नील वदन अति सुंदर, मंद स्मित मुख राधा मनोहर। गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर, मेघ श्यामल माधव मुरहर।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद दो भी कहते हैं।
घन घन नीला वदन अति सुंदर,
घन घन नील वदन अति सुंदर,
घन घन नील वदन अति सुंदर,
घन घन नील वदन अति सुंदर,
मेघ श्यामल माधव मुरहर,
मेघ श्यामल माधव मुरहर,
मेघ श्यामल माधव मुरहर,
मेघ श्यामल माधव मुरहर,
घन घन नील वदन अति सुंदर,
घन घन नील वदन अति सुंदर,
मंद स्मित मुख राधा मनोहर,
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 गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर,
गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर,
गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर,
गोविंद गोपाल ಕಟವರ ಗಿರಿಧರ
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಘನ ಘನ ನೀಲ ಬದನ ಅತಿ ಸುಂದರ
ಕಹರ್ವಾ ತಾಲ್ ಔರ್ ಅಧಿಕಾಂಶತಃ ರಾಗ ಮಿಯಾ ಕಿ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪರ್ ಆಧಾರಿತ ಇಸ್ ಭಜನ್ ಕಿ ಧುನ್ ಜಾನ್ ಲೇನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಆಯಿಯೆ ಅಬ್ ರುಕ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಸಾಯಿ ಭಜನೋ ಕಿ ಆತ್ಮಾ ಕಹೆ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ಭಾವ ಪಕ್ಷ ಕಾ
ಘನ ಘನ ನೀಲ ಬದನ ಅತಿ ಸುಂದರ
ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ವರ್ಣ ಕೋ ನೀಲಾ ಇಸಿಲಿಯೆ ದಿಖಾಯಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೇ ಸಮುದ್ರ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಗಹರೆ ಔರ್ ವೇ ಅಸೀಮಿತ ಆಕಾಶ ಕಿ ತರಹ ವಿಸ್ತೃತ ಹೈ ನೀಲಾ ವರ್ಣ ಹಮಾರಿ ಆಂಖೋ ಕೋ ದಿಖತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಆಕಾಶ ಕಾ ಕೋಯಿ ರಂಗ ನಹಿ ಹೋತಾ ಠೀಕ್ ಉಸಿ ತರಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಭಿ ಕೋಯಿ ಗುಣ ನಹಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಮನ್ ಕೆ ಚಕ್ಷುವೋ ಸೆ ವೇ ನೀಲ ವರ್ಣ ಕೆ ದಿಖತೆ ಹೈ ಸನ್ 1996 ಮೇ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಏಕ್ ಪ್ರವಚನ್ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಹಮ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಆಕಾಶ ಕಾ ರಂಗ ನೀಲಾ ಹೈ ಸಮುದ್ರ ಕಾ ರಂಗ ಭಿ ನೀಲಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ನಹಿ ಹೈ ನಾ ತೋ ಆಕಾಶ ಔರ್ ನಾ ಹಿ ಸಮುದ್ರ ನೀಲೆ ರಂಗ ಕಾ ಹೈ ಸಮುದ್ರ ಕಿ ಗಹರಾಯಿ ಔರ್ ಆಕಾಶ ಕಿ ಅಸೀಮತಾ ನೀಲ ವರ್ಣ ಕಾ ಅಹಸಾಸ್ ಹಮೇ ಕರಾತಿ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಯೇ ಭಿ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಈಶ್ವರ್ ಅಥಾಹ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಗಹರಾ ನೀಲಾ ರಂಗ ಉಸಿ ಗಹನತಾ ಕಾ ಸೂಚಕ ಹೈ ಸಮುದ್ರ ಔರ್ ಆಕಾಶ ಉನ್ಕಿ ಗಹನತಾ ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಲೆ ದಿಖಾಯಿ ದೇತೆ ಹೈ ಯೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ನೀಲ ವರ್ಣ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಅಬ್ ಹಮ್ ಅತಿ ಸುಂದರ ಶಬ್ದ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ ಸನ್ 1978 ಕೆ ಗ್ರೀಷ್ಮಕಾಲೀನ ಸಮರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೆ ದೌರಾನ್ ದಿಯೆ ಗಯೆ ಏಕ್ ಪ್ರವಚನ್ ಮೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೆ ಕಹಾ ಥಾ ತೆಲುಗು ಕವಿ ಭಕ್ತ ಪೋತನಾ ಜೀ ಜೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೋ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಸೆ ತೆಲುಗು ಮೇ ಅನುವಾದ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈ ಉನ್ಹೊನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಅವತಾರ ಕಿ ಸುಂದರತಾ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಪೋತನಾ ಜೀ ನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಮುಖ ಕಿ ಉಪಮಾ ಚಂದ್ರಮಾ ಸೆ ಆಂಖೋ ಕಿ ಉಪಮಾ ಮಛಲಿ ಸೆ ಕಿ ಇಸ್ ತರಹ ಕಾ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಉನ್ಹೊನೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಗೋ ಕಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುವೋ ಸೆ ತುಲನಾ ಕಿ ಇಸ್ಕಿ ಓರ್ ಸಂಕೇತ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ಉಪಮಾ ಚಂದ್ರಮಾ ಸೆ ವೇ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ತಬ್ ಚಂದ್ರಮಾ ನೆ ಸೋಚಾ ಕ್ಯಾ ಮುಜ್ಮೇ ಔರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ದಿವ್ಯ ಮುಖ ಮೇ ಕೋಯಿ ಸಮಾನತಾ ಹೈ ಇಸ್ ಉಪಮಾ ಕೋ ಸುನ್ ವೆ ಶರ್ಮಿಂದಾ ಹುಯೆ ಔರ್ ಭಾಗ ಕರ್ ಆಕಾಶ ಮೇ ಛಿಪ ಗಯೆ ಇಸಿ ತರಹ ಮಛಲಿಯೋ ನೆ ಸೋಚಾ ಕಿ ಹಮ್ ಮೇ ಔರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಿ ತಾರೋ ಜೈಸಿ ಚಮಕ್ತಿ ಹುಯಿ ಆಂಖೋ ಮೇ ಕೋಯಿ ಸಮಾನತಾ ನಹಿ ಹೈ ಔರ್ ವೇ ಭಿ ಸಮುದ್ರ ಕೆ ಗಹರೆ ಪಾನಿ ಮೇ ಜಾಕರ್ ಛಿಪ ಗಯಿ ಜಬ್ ಗೋಪಿಯೋ ನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ಯೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೋಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಂದರತಾ ನಹಿ ಹೈ ತಬ್ ವೇ ಇಸ್ ನತೀಜೆ ಪರ್ ಪಹುಂಚಿ ಕಿ ಇಸ್ ಸುಂದರತಾ ಕಾ ಕಾರಣ ಉನ್ಕಾ ದಿವ್ಯ ಆನಂದ ಹೈ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಘನ ಘನ ನೀಲ ಬದನ ಅತಿ ಸುಂದರ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹುವಾ ಹಮ್ ಉಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜಿನ್ಕಾ ಚೆಹರಾ ಉನ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಗುಣೋ ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಲಾ ದಿಖಾಯಿ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ವೇ ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಹೈ ಜೊ ಬಹುತ್ ಹಿ ಮನಮೋಹಕ ಹೈ ಔರ್ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಔರ್ ಆನಂದ ಕಾ ಪ್ರಸಾರ ಅಪ್ನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ದ್ವಾರಾ ಕರ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ ಚಲಿಯೆ ಅಬ್ ಚಲತೆ ಹೈ ಇಸ್ ಭಜನ್ ಕಿ ದೂಸರಿ ಪಂಕ್ತಿ ಪರ್
ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲ ಮಾಧವ ಮುರಹರ
ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ್ ಯಾನಿ ವರ್ಷಾ ಕೆ ಕಾಲೆ ಬಾದಲೋ ಸಾ ಕ್ಯೂ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಉನ್ಹೊನೆ ಕಹಾ श्री कृष्ण मन को विषयों से खींचकर अपनी ओर आकर्षित कर मनुष्य की शांति, प्रेम एवं ज्ञान की जो पिपासा है उसे शांत करते हैं, जैसे वर्षा का पानी मनुष्य की प्यास बुझाता है। इसीलिए उन्हें मेघश्याम अर्थात वर्षा के काले बादल कहकर संबोधित किया जाता है। विषयों की प्यास जो तुच्छ है वो अपने आप ही गायब हो जाती है जब मन श्री कृष्ण के मधुर नाम और कृष्ण भाव में रम जाता है। भगवान ने आगे कहा कि जिसको भी कृष्ण की प्यास है, जो उनको वियोग की प्यास बुझाने पुकारता है, भगवान कृष्ण मेघ की तरह आकर उसकी प्यास बुझाने स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है भगवान श्री कृष्ण को मेघश्याम नाम से संबोधित करने का। माधव शब्द के विच्छेद से प्राप्त होता है मां और धव। भगवान कृष्ण श्री विष्णु भगवान के अवतार हैं, इसीलिए यहां मां का अर्थ है लक्ष्मी जी, जो विष्णु भगवान की पत्नी है। मां का अर्थ प्रकृति भी है, धव का अर्थ है मालिक। तो इस प्रकार माधव का अर्थ हुआ श्री लक्ष्मी जी के मालिक अर्थात पति और प्रकृति के मालिक। भगवान कृष्ण ने मुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए उन्हें मुरहर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहां मुर का तात्पर्य अज्ञान से भी है, जो हमें शरीर से बांधे रखता है और हमें अपने दिव्य स्वरूप से वंचित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण इस अज्ञान का विनाश कर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं, इसीलिए उन्हें मुरहर शब्द से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार मेघ श्यामल माधव मुरहर इस पंक्ति में हम उस ईश्वर को पुकार रहे हैं जो वर्षा के काले बादल की तरह हमारे जीवन में आकर हमारी ब्रह्म से एक होने की पिपासा को मिटाते हैं। वे लक्ष्मी जी एवं प्रकृति के मालिक हैं और वे हमारे ऊपर पड़े अज्ञान के आवरण को हटा देते हैं। चलिए अब चलते हैं भजन की अगली लाइन पर।
मंदस्मितमुख राधा मनोहरा।
भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान की महिमा को दर्शाने के लिए भगवान बाबा प्रायः एक लघु कथा कहा करते थे, जिसमें एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम जी और उनके एक दोस्त सात्विकी के साथ बचपन में एक जंगल में विचरण कर रहे होते हैं और एक राक्षस भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के सामने नतमस्तक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान से उस राक्षस के हृदय को जीत लिया था। भगवान बाबा इस चिन्ह कथा अर्थात छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें बोध कराते हुए ये कहते थे कि गुस्से का विनाश गुस्से से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्रोध को सहनशीलता से, क्रूरता को अहिंसा से, घृणा को करुणा एवं क्षमाशीलता से ही जीता जा सकता है। भगवान कृष्ण जब छोटी उम्र के थे तभी उनकी मुस्कान का ये कमाल था, इसीलिए उनको मंदस्मित मुख कहना सर्वथा उचित है। भगवान भी हमें ये उपदेश देते हैं कि हमें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। ये मुस्कान निंदा स्वरूप दूसरों पर हंसने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी मुस्कान से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि दूसरों को उससे खुशी मिलनी चाहिए और आनंद का विस्तार होना चाहिए। मुस्कान एक सकारात्मक ऊर्जा है। कहा जाता है कि मुस्कुराते समय जब हमारे अधरों पर एक अर्धचंद्राकार विकृति आ जाती है, वो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को सीधा कर देती है। इसीलिए हमें सदा स्मरण रहे कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, विशेषकर जब हम विषम परिस्थितियों और विकट व्यक्तित्व का सामना कर रहे हों। भगवान हमारे द्वारा अपनी सकारात्मक ऊर्जा एवं प्रेम को फैलाकर हमें जीवन का सामना करने में सक्षम बना देते हैं। राधा जी के बारे में भगवान ने कई बार विस्तृत वर्णन किया है और गूढ़ अर्थ बताया है। सन 1978 के समर कैंप अर्थात ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान दिए गए एक प्रवचन में स्वामी ने कहा, विश्व को ज्ञान का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया, इसी तरह विश्व को शक्ति का बोध कराने के लिए उन्होंने राधा जी को चुना। जिसके माध्यम से उन्होंने भक्तों के लक्षण को प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि जब हम मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारी उस स्थिति को राधा कहा जाता है। राधा शब्द केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं है, हमें समझना चाहिए कि जो भी श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है वो राधा है। इसी प्रवचन में भगवान ने आगे कहा कि हमें अपने जीवन में उतारने योग्य लक्षण श्री राधा जी से सीखने चाहिए। एक ये कि हम मात्र हमारे मस्तिष्क को ज्ञान से भर दें, यही काफी नहीं है, हमारा हृदय भी प्रेम युक्त होना चाहिए, हम में भगवान के प्रति तीव्र जिज्ञासा एवं प्रेम होना चाहिए। राधा जी से हमें जो दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए वो ये है कि हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को समर्पण भाव से भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए, नहीं तो वे विषयगामी होकर हमें गलत रास्ते पर ले जाएंगी। भगवान बाबा ने कहा कि हम राधा जी को तभी समझ सकते हैं जब हम उनकी कृष्ण मिलन की तीव्र पिपासा की परिभाषा को समझ सकें। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आधार मानती थी और वे एक निरंतर धार की तरह उनकी आराधना करती रहती थी। श्री कृष्ण की ओर उनका प्रेम सदैव प्रवाहित होता रहता था। वे धरा यानी प्रकृति हैं, जो पुरुष अर्थात भगवान का ही दूसरा रूप है। चलिए अब चलते हैं इस भजन की अगली पंक्ति पर।
गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर।
भगवान कहते हैं कि गोविंद का अर्थ हुआ वे जो गाय अर्थात जीव एवं समस्त प्राणी मात्र के पालनहार हैं। भगवान ने इसका अंतरार्थ बताते हुए कहा कि गोविंद का अर्थ है वे जो हमारे अंदर के पाश्विक गुणों को नियंत्रण में रखते हैं और अपनी कृपा से उन पाश्विक गुणों को दिव्य या दैविक गुणों में रूपांतरित कर देते हैं। अन्यत्र एक जगह स्वामी ने इस शब्द की एक और व्याख्या की है। उन्होंने कहा, गोविंद शब्द ध्वनि है, चाहे व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द हों या जानवरों द्वारा निकाली गई ध्वनि हो, वेद कहते हैं कि इन सब का एक ही आधार है। ऊपरी सतह से वे भिन्न भिन्न ध्वनियां प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन उनकी आधारभूत ध्वनि एक ही है। इस तरह से गोविंद का अर्थ हुआ वे जो इस आधारभूत ध्वनि के साकार स्वरूप हैं। गोपाल शब्द में भी गो का अर्थ है गाय और पाल का अर्थ है पालन करने वाला, मतलब गायों की रक्षा करने वाला भगवान कृष्ण। नटवर का अर्थ है नृतकों का शिरोमणि। कथक नृत्य भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैलियों में से एक है। कहा जाता है कि इस नृत्य शैली में पैरों के थिरकन की जो आधारभूत ताल है वो श्री कृष्ण के कालिया नाग के फन के ऊपर किए गए नृत्य से ली गई है। गिरिधर दो शब्दों से बना है, गिरि एवं धर। गिरि का अर्थ है पहाड़ और धर माने धारण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कानी उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत का धारण कर लिया था, तभी से उनका नाम गिरिधर पड़ गया। इस प्रकार इस पंक्ति गोविंद गोपाल नटवर गिरिधर में हम उन ईश्वर की स्तुति करते हैं जो हमारे विघ्नों को दूर कर प्रेम से सबका पालन पोषण करते हैं। वे जो नर्तकों के शिरोमणि हैं एवं उदार हृदय भगवान जिन्होंने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया हुआ है। तो चलिए अब हम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर हृदय को साई प्रेम की भावनाओं से भरकर भाव विह्वल होकर एक बार फिर से इस भजन को गाते हैं।
घन घन नील वदन अति सुंदर, घन घन नील वदन अति सुंदर, श्यामल माधव मुरहर। శ్యామల మాధవ మురహర స్మిత ముఖ రాధా మనోహర గోవింద గోపాల నటవర గిరిధర గోవింద గోపాల మాధవ మురహర రాధా మనోహర గోవింద గోపాల లఠవర గిరిధర మేఘ శ్యామల మాధవ మురహర
इसी के साथ हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा। हम जल्द ही आपके सम्मुख एक और भजन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय साईं राम।